अमेरिका और जापान की आपसी संबंध 1922 से 1931। वाशिंगटन सम्मेलन के फलस्वरूप विभिन्न देशों में जो अच्छे संबंध स्थापित हुए वे कुछ समय तक वैसे ही बने रहे। जापान द्वारा वाशिंगटन संधियों के अंतर्गत अपने दायित्वों के पालन से तथा चीन और कोरिया के प्रति अपनी नम्र नीति के कारण अमेरिका द्वारा जापान की आलोचना में कमी हो गई थी तथा सितंबर 1923 में जापान के प्रलयकारी भूकंप में अमेरिका की जनता ने जापान की जो तुरंत एवं प्रचुर सहायता की उससे जापान की जनता के हृदयों में अमेरिका के प्रति कृतज्ञता की भावना जागृत हो गई। सन 1924 में भद्रजनोचित समझौते का स्थान एक नए सामान्य अप्रवास कानून ने ग्रहण कर लिया। इससे पुनः जापान में अमेरिका के प्रति विरोधी भावना जागृत हो गई। इस नए कानून ने सभी ऐसे विदेशी जो नागरिकता के अधिकारी नहीं थे प्रवेश पर रोक लगा दी और इसमें जापानी भी सम्मिलित थे, परंतु सरकारी कर्मचारी, व्यापारी और उस देश में अस्थायी रूप से विद्यमान विदेशी पर्यटक, विदेश यात्रा से वापस आने वाले अप्रवासी, मंत्रीगण एवं प्राध्यापक तथा उनकी पत्नियां एवं 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कम से कम 15 वर्ष की आयु के वास्तविक विद्यार्थी इसके अपवाद थे। इस अधिनियम द्वारा भद्रजनोचित समझौता रद्द हो गया और इस बार जापान के बजाय अमेरिका ने अप्रवास पर पाबंदी लगा दी, जिसका सख्ती से पालन किया गया। इस अधिनियम से जापानियों ने स्वयं को अत्यधिक अपमानित अनुभव किया, जिसका आंशिक कारण इसमें लिखित विषय वस्तु तथा जापान के प्रति भेदभाव की भावना थी, क्योंकि इससे इस बात का संकेत मिलता था कि अन्य एशिया वासियों के साथ साथ जापानी उनकी निगाह में निकृष्ट हैं। जापानियों को उनका यह व्यवहार अपमानजनक प्रतीत हुआ, लेकिन इस विधेयक के समर्थकों का यह दृढ़ मत था कि अमेरिका में विदेशियों के प्रवेश का विषय पूर्ण रूपेण उनका घरेलू मामला है और इसलिए इस विषय पर किसी विदेशी राष्ट्र से परामर्श लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता, और साथ ही इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं कि जापानी उनसे निकृष्ट हैं, बल्कि केवल यह पूर्वी संस्कृति की पृष्ठभूमि के कारण यूरोप के लोगों की अपेक्षा उन्हें आत्मसात करना अधिक कठिन है। इसके अलावा उनका कहना था कि ऐसा प्रतीत होता है कि जापान अमेरिका को डरा धमका कर अपने नागरिकों को अमेरिका में प्रविष्ट कराने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका वालों का यह तर्क जापान के लोगों को उपयुक्त नहीं प्रतीत हुआ और इससे उन्हें अत्यधिक नाराजगी हुई और उनकी भावनाओं को तीव्र आघात पहुंचा। लेकिन जापान में अमेरिका के विरुद्ध बहुत ही कम हिंसात्मक विरोध हुआ, क्योंकि वहां की सरकार ने सामूहिक हिंसात्मक कार्यों को तुरंत हतोत्साहित कर उनका सख्ती से दमन किया। लेकिन कोई भी यह स्पष्ट समझ सकता था कि दोनों देशों के आपसी संबंधों में तनाव हो गया है और समय के साथ साथ इसमें कमी होने के बजाय वृद्धि होने की ही संभावना अधिक है। जापान द्वारा चीन के मामलों पर अधिकाधिक नियंत्रण स्थापित करने की इच्छा तथा अमेरिका द्वारा मुक्त द्वार के सिद्धांत के समर्थन ने इस तनाव में और वृद्धि की। चीन और जापान की आपसी संबंध 1922 से 1931। वाशिंगटन सम्मेलन के आरंभ होने के साथ ही जापान ने चीन के प्रति पहले की अपेक्षा अधिक मित्रतापूर्ण रुख अख्तियार करना आरंभ कर दिया। इस समय देश पर अपेक्षाकृत अधिक उदार सरकार का शासन था, इसलिए वह विदेशों में नम्र नीति का अनुसरण कर रही थी। वाशिंगटन में हुए समझौतों के अनुसार जापान ने शांतुंग प्रदेशों में अधिकृत संपत्तियों को चीन को लौटा दिया और वाशिंगटन समझौते द्वारा निर्धारित तिथि तक चीन में विद्यमान सभी जापानी डाकखाने बंद कर दिए। 1922 से पूर्व की भांति जापान के लोगों और जापानी शासन के विरुद्ध कोई हिंसात्मक कार्य नहीं किए गए। यद्यपि इस समय जापान का रुख प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तथा उसके बाद की अपेक्षा कम झगड़ालू था, लेकिन चीन के प्रति उसकी दिलचस्पी भी अभी अभी लेकिन चीन के प्रति उसकी दिलचस्पी में अभी कमी नहीं आई थी, और वह अब चीन में अधिकृत प्रदेशों पर से अपना आधिपत्य छोड़ने को तैयार न था। वह मंचूरिया में पट्टे पर अभिगृहित प्रदेश का तेजी से विकास कर रहा था। अन्य अधिकांश देशों के समान जापान ने भी बक्सर विद्रोह में अपने हिस्से की हर्जाने की बची रकम अदा कर दी, तथा कुछ अन्य देशों के समान उसने इसे कुछ ऐसी वस्तुओं में परिवर्तित करवा लिया जिससे उसे किसी तरह की हानि की संभावना न थी, बल्कि संभवतः उससे चीन में उसके प्रभाव में ही कुछ वृद्धि होती। मई 1925 में शंघाई में जापानियों द्वारा अधिकृत एक मिल में हड़ताल के कारण झगड़ा छिड़ गया। श्रमिकों के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले उनके कुछ शुभचिंतक विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय उपनिवेश में 30 मई को पुलिस की गोली के शिकार हो गए। इसके बाद सारे देश में क्रोध की लहर फैल गई, और इससे अन्य चीजों के साथ साथ एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण बात यह हुई कि सारे देश ने ब्रिटेन और जापान के लोगों का बहिष्कार कर दिया। इस घटना में जापान के लोगों को अंग्रेजों की तरह विशेष हानि नहीं उठानी पड़ी, और न ही उन्होंने इसका उग्र रूप से प्रतिकार ही किया। मार्च 1927 में जब चीन की राष्ट्रवादी सेनाओं ने नानकिंग पर अधिकार किया तो विदेशियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। अन्य देशों के अधिवासियों के साथ साथ जापानियों का भी इसमें नुकसान उठाना पड़ा। जापान के वाणिज्य दूतावास को लूट लिया गया, तथा कुछ जापानी जिनमें वाणिज्य दूत भी सम्मिलित थे, चीनियों द्वारा घायल कर दिए गए। जापान सरकार ने अन्य पीड़ित देशों के साथ मिलकर केवल यही मांग की कि अपराधी सेनाओं के कमांडरों को सजा दी जाए, उनके प्रति किए गए इस दुर्व्यवहार के लिए क्षमा याचना की जाए, तथा जन धन की क्षति को पूरा किया जाए। अप्रैल 1927 में हांगको में जापान द्वारा अभिगृहित भूभाग में वहां के लोगों ने जापानियों पर आक्रमण किया तथा उन्हें हताहत कर दिया। लेकिन फिर भी टोक्यो प्रशासन ने बहुत संयम से काम लिया। सन 1929 की ग्रीष्म ऋतु में उत्तर में चीनी राष्ट्रवादियों की प्रगति देख जापान ने शांतुंग में अपनी सेनाएं भेजी। इस प्रदेश में बहुत से जापानी रहते थे, और टोक्यो प्रशासन का यह कथन था कि उसने नानकिंग और हांगचाओ में पूर्व घटित घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ही ऐसा कार्यवाही की है। शरद काल में जब राष्ट्रवादी सेनाओं की प्रगति रुक गई तो उन्होंने अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया। सन 1928 में जब पुनः राष्ट्रवादी सेनाओं ने आक्रामक कार्यवाहियां शुरू की तो जापान ने फिर अपनी सेनाएं शांतुंग में भेज दी, क्योंकि अभी भी वहां सैकड़ों जापानी नागरिक विद्यमान थे। मई 1928 में जब राष्ट्रवादी शांतुंग की राजधानी चिनान पहुंचे तो वहां जापानी और चीनी सेनाओं की मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों पक्षों के काफी लोग हताहत हुए, और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अन्यायपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया। कुछ समय के लिए नगर पर जापानियों का नियंत्रण रहा, फलस्वरूप एक बार फिर सारे देश में जापानियों के बहिष्कार की लहर व्याप्त हो गई, और दोनों देशों के आपसी संबंध अत्यधिक तनावपूर्ण हो गए। अगले वर्ष मार्च में जापान का चीन की सरकार से समझौता हो गया, और मार्च 1929 में एक बार फिर उस प्रांत से जापानी सेनाओं को वापस स्वदेश बुला लिया गया। जैसे जैसे चीन में राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रसार होता गया, वैसे वैसे मंचूरिया में जापान की उपस्थिति उत्तेजना का कारण बनती गई। इस समय जापान को यह विशेष रूप से अनुभव होने लगा कि वह इस प्रदेश का परित्याग नहीं कर सकता। जापान यहाँ पर क्रमशः अधिकाधिक पूंजी लगाता जा रहा था, तथा यहाँ के कोयले तथा लोहे के अक्षय भंडार का जापान के उद्योगों के लिए विशेष महत्व था। चीन मंचूरिया में अपने रेल व्यवस्था के निर्माण में प्रयत्नशील था, जिससे वह जापान की सड़कों पर निर्भर न रहकर आंशिक रूप से स्वतंत्र रह सके। साथ ही वह निकास के लिए हुलुताओ में एक बंदरगाह का विकास कर रहा था। सौभाग्यवश मंचूरिया में चीनियों द्वारा चांग त्सुलिन के नेतृत्व में संचालित प्रशासन चीन के अन्य भागों के प्रशासन की अपेक्षा कहीं अधिक अस्थायी था। यहाँ अपेक्षाकृत कम अव्यवस्था थी, इसलिए जापानियों के जन व माल को भी कम खतरा था, तथा यहाँ शांतुंग की भांति भयंकर सशस्त्र संघर्ष की भी नौबत नहीं आई। जून 1928 में राष्ट्रवादियों के साथ संघर्ष के दौरान जब चांगत्सो लिन मुकदेन लौट रहा था, तो वह एक बम से बुरी तरह घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। लोगों की यह आम धारणा थी कि हत्या के पीछे जापानियों का हाथ है। आगे चलकर इस आरोप के कारण जापानी डाइट में गंभीर संकट खड़ा हो गया। यद्यपि चांग त्सुलिन की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र चांग शुए लियांग ने उसका स्थान ग्रहण किया और वह राष्ट्रवादियों से मिल गया, लेकिन जापान के साथ उसके संबंध यथापूर्व कायम रहे। जापान इस बात पर दृढ़ता से अड़ा रहा कि मंचूरिया में उसके मुख्य स्वार्थ राजनीतिक न होकर आर्थिक है, और राष्ट्रवादियों के तिरस्कारपूर्ण रवैये के बावजूद भी उसने इस मामले पर उस समय विवाद खड़ा करना उचित न समझा। लेकिन एक बात स्पष्ट थी कि मंचूरिया अभी भी खतरे की जड़ है। चीन में शुल्क पद्धति के विषय में स्वायत्तता तथा अपरदेशीयता के अधिकार के उन्मूलन का दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ आंदोलन जापानियों के लिए विशेष रूप से चिंता का विषय था। विदेशी वाणिज्य का काफी बड़ा भाग चीन के साथ उसके व्यापार के रूप में था। चीन की आयात शुल्क में वृद्धि का प्रभाव अमेरिका व इंग्लैंड की अपेक्षा चीन पर अधिक पड़ता था। जापान को छोड़कर यही दो ऐसे देश थे जिनका चीन के सामुद्रिक व्यापार में महत्वपूर्ण हाथ था। अतएव जब चीन ने शुल्क दर में पुनरीक्षण की मांग की और यह सलाह दी कि समानता एवं आदान प्रदान की ही नीति समानता एवं आदान प्रदान की नीति ही इसका आधार होना चाहिए, तो जापान ने इसका विरोध किया। लेकिन जब ब्रिटेन, अमेरिका तथा कुछ अन्य राष्ट्रों ने शुल्क पद्धति के विषय में चीन की स्वायत्तता को स्वीकृति प्रदान कर दी और 1 फरवरी 1929 को इसने क्रियात्मक रूप ग्रहण कर लिया, तो अंत में जापान ने भी इसे स्वीकार कर लिया। परंतु अपरदेशीयता के अधिकार को समाप्त करने पर वह किसी भी तरह सहमत न हुआ।